Welcome to the Sunday edition of Market Month, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav, and with my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra.
Namaskar, Shrotao. Karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Aaj Ravivar hai, aur har Ravivar ki tarah aaj bhi hum mutual funds se jude aapke sawalon ke jawab denge. Sawal puchne ke liye aap in numbron par phone kar sakte hain. 2331-4444, 2342-1050 aur 2331-0464. दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
जी धन्यवाद।
पहले हेडलाइंस के साथ वैभव।
फर्स्ट द हेडलाइंस। इन इंडियन फ्यूचर्स मार्केट सिल्वर प्राइसेस सॉ 15% लास्ट वीक। Global crude oil prices post moderate gains last week, and domestic markets to focus on India's industrial production data and global trends for cues next week.
भारत के वायदा बाजार में पिछले हफ्ते चांदी में 15% की तेजी, पिछले हफ्ते कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में मामूली बढ़त, और अगले हफ्ते देश के शेयर बाजारों का फोकस रहेगा भारत के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों और दुनिया के रुझानों पर।
The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
So, Vaibhav, let's start the news.
Absolutely.
भारत के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतें नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई। दोनों कीमती धातुओं में लगातार तेजी बनी हुई है। वायदा बाजार यानी फ्यूचर्स मार्केट में पिछले हफ्ते कारोबार के दौरान मार्च डिलीवरी की चांदी 15% उछलकर 2,42,000 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, और फिर 2,39,787 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। औद्योगिक मांग में तेजी, सीमित आपूर्ति, अगले साल अमरीकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और विश्व राजनीति की अनिश्चितता से चांदी की चमक लगातार बढ़ रही है। विश्व बाजार में भी चांदी $79.70 प्रति औंस के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। देश के बाजार में एमसीएक्स में फरवरी डिलीवरी का सोना 1,39,873 रुपये प्रति 10 ग्राम के अपने उच्चतम बंद स्तर पर पहुंच गया। पिछले हफ्ते इसमें 4.2% की बढ़त दर्ज की गई। साप्ताहिक कारोबार के दौरान यह अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 1,40,465 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था।
Subodh, we are joined in by our first caller this evening from Jhansi, Ronak. Welcome to Market Mantra. Please ask your question.
नमस्ते सर।
जी नमस्कार।
सर, मैं अपने म्यूचुअल फंड को थोड़ा रिव्यू कराना चाहता था कि उसमें कोई फंड ऐड करूं या कुछ हटाऊं। मेरे पास 3 फंड है। बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड, जिसका शेयर करीब 35% है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, जिसका शेयर करीब 10% है, और बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, जो करीब 64-65% के आसपास है। तो इसमें कोई फंड कम करूं या कुछ और ऐड कर लूं? थैंक यू।
रौनक जी, जितने कि मैं समझ पा रहा हूं कि आपने एक वैसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जिसमें कि आपने इक्विटी और साथ में डेट का भी एक्सपोजर दिया है बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड के थ्रू, साथ में निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड भी है। इसमें जो एक सिर्फ एक छोटा सा कंसर्न मेरे को दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि आपका जो मेजर पोर्शन है मनी का, अराउंड 80-90%, वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ एक AMC बैंक ऑफ इंडिया पे पूरा का पूरा निर्भर है। जब हम लोग अलग अलग फंड्स में डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग असेट क्लास में डाइवर्सिफाई करते हैं, वहां पे बहुत जरूरी है कि हम लोग AMC लेवल पर भी डाइवर्सिफिकेशन दें। عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو بھی ساری انویسٹمنٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہے جو سی آئی او ہوتے ہیں جو فنڈ ہاؤسز کے, وہ کہیں نہ کہیں سارے فنڈس پہ ان کی جو ایک اسٹریٹجی ہے وہ تھوڑا بہت امپیکٹ کرتی ہی ہے, بھلے ہی وہاں کا فنڈ مینیجر بھی الگ ہو. سو ویسے آپ کا پورٹ فولیو ٹھیک ہے, بٹ میری صلاح رہے گی کہ تھوڑا سا اس کو ایک ڈائیورسیفیکیشن لانے کی کوشش کریے. ایک ہی فنڈ ہاؤس پہ زیادہ نربھر مت رہے, دو تین فنڈ ہاؤسز میں اس کو بانٹ کر اپنا پیسہ لگائیں.
جی اگلے کالر ہیں فرید آباد سے, دیویندر سواگت ہے آپ کا, سوال پوچھیں.
ہاں جی سر, گڈ ایوننگ.
گڈ ایوننگ
سر, میرا کوشچن ہے کہ ایک فنڈ ہے ایڈلویس یو ایس ٹیک فنڈ, اس کے بارے میں جانکاری چاہیے تھی کہ یہ فنڈ کیسا ہے.
ایڈلویس کون سا فنڈ بتایا آپ نے, سوری میں نام پورا نہیں سن پایا آپ کا.
لگتا ہے ان سے ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے.
We could in general talk about is the AMC secured and do we need to diversify or what?
Yeah, to be honest it would be difficult to say anything without getting the name of the fund, but otherwise the AMC
is. اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں ہم, گجرات سے راجندر ہمارے ساتھ ہیں. راجندر جی سواگت ہے آپ کا, سوال پوچھیں.
نمسکار سر.
نمسکار
سر, میرا کہنا, میرا پرشن یہ ہے کہ جیسے سبھی وشیشج یہ ہم کو صلاح دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی ایمرجنسی کے لیے کچھ فنڈ ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہیے, تو سر میرا کہنا یہ کہ ہم جو اپنا ایمرجنسی فنڈ اپنے پاس رکھتے ہیں اپنے ایمرجنسی کے لیے, تو سیونگ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں تو اس پہ تو کچھ زیادہ بیاج ملتا نہیں ہے, تو کچھ ہم ایسی صلاح دے سکتے ہیں کہ ہم جب ہمیں ضرورت ہو ہم کو ترنت پیسہ مل بھی جائے لیکن ہم کو بیاج بھی اس پر اچھا ملے, 6-7%, 8%, کچھ ایسا راستہ بتائیں سر. دھنیہ واد سر.
راجندر جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک جو ایمرجنسی فنڈ ہوتا ہے اس کا جو ایک مین آبجیکٹیو ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کو جب بھی کبھی کہیں پہ ضرورت ہو ایک پیسہ مل جائے لیکوڈیٹی کا بنا کسی زیادہ دقت کرے. وہیں پر بہت زیادہ یہاں پہ ریٹرن کی اپیکشا نہیں کرنی چاہیے, بٹ میں آپ کا پوائنٹ سمجھ پا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو آپٹیمائز کرنا چاہتے تو دیکھیے ایک آئیڈیل سینیریو میں جو آپ کا ایک ایمرجنسی فنڈ ہوتا ہے ان کو تین بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں. سب سے پہلا ایک تھوڑا سا پورشن جو کہ آپ کیش کے طور پہ اپنے گھر میں جو بھی آپ کا لاکر ہے اپنے کبرڈ ہے سیف لاکر ہے وہاں پر رکھے کہ کبھی کچھ ضرورت ہو تو ایک دم وہ آپ کے پاس ریڈیلی اویلیبل ہے. پھر جو ہے تھوڑا سا پورشن آپ اپنے سیونگس بینک اکاؤنٹ میں ایک سویپ ان فکس ڈپازٹ نام سے چیز آتی ہے, آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. ایک طریقے کا فکس ڈپازٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کے سیونگس بینک سے لنک ہو جاتا ہے, اور جب کبھی آپ کے سیونگس بینک اکاؤنٹ کا جو ایک منیمم بیلنس ہے وہ تھریش ہولڈ سے نیچے فال کرتے یہ آٹومیٹکلی لیکوڈیٹ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی سیپریٹ ریکویسٹ نہیں ڈالنی پڑتی, آپ اے ٹی ایم سے وڈرا کرے کسی کو چیک دے وہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے, تو کچھ ایک وہاں پہ آپ کو زیادہ انٹرسٹ مل جائے گا. اور باقی کا تھوڑا سا پورشن آپ ایک لیکوڈ فنڈ میں یا ایک الٹرا شارٹ ڈیوریشن فنڈ میں انویسٹ کر سکتے جہاں پہ کہ آپ کے ریٹرنز اور بھی زیادہ آپٹیمائز ہو جائیں گے.
We have a next caller from Delhi. Dinesh is joining in. Dinesh, welcome to Market Munch. Please ask your question.
Namaskar.
جی
میں دنیش کمار بول رہا ہوں دلی اشوک وہار سے. میں ایک تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگلے دو تین سالوں کو دیکھتے ہوئے کہاں انویسٹمنٹ بیٹر رہے گا, کس کیٹیگری میں, یا تو اکویٹی بیسڈ میوچل فنڈس میں یا ایگریسو ہائبرڈ فنڈس میں یا ملٹی کرنسی فنڈس میں. اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملٹی کرنسی فنڈس ہوتے ہیں جس میں اکویٹی 35-65% کے بیچ میں ہوتی ہے, اس کا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ٹیکسیشن کیسے نردھارت ہوتا ہے؟ تھینک یو.
دنیش جی, سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا انویسٹمنٹ ہورائزن 2-3 سال ہے تو پھر آپ پیور اکویٹی فنڈ کی طرف نہ دیکھیں, وہ کافی رسکی رہ سکتا ہے. پیور اکویٹی فنڈز میں ہمارے کو تبھی جانا چاہیے جب ہمارا انویسٹمنٹ ہورائزن کم سے کم 5 سال ہو. اور وہیں پر میں کہوں گا کہ اگر آپ کا گول کچھ ایسا ہے کہ آپ تھوڑا سا نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ایک دم سٹرنجنٹ گول نہیں ہے, تھوڑا بہت ٹائم اوپر نیچے آپ کو چلے گا, تو پھر آپ اکویٹی سیونگ فنڈز کی طرف دیکھ سکتے ہیں 2-3 سال کے ہورائزن کے لیے, وہ ایک بہتر وکلپ رہے گا. اس میں आपको इक्विटी टैक्सेशन भी मिल जाएगा, यानी कि अगर आप एक साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो जो आपके गेन्स होंगे, पहले 1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तो टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं, और उसके बाद केवल 12.5% का टैक्स होता है, और शॉर्ट टर्म के एक साल से पहले अगर विड्रॉ करेंगे, जो कि इस केस में मुझे दिखता नहीं, तो वो 20% होता है। तो आप एक इक्विटी सेविंग्स फंड का चुनाव कर सकते हैं 2-3 साल के होराइजन के लिए, लेकिन केवल तभी अगर गोल बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट या नॉन नेगोशिएबल नहीं है। वहीं अगर गोल कुछ ऐसा है कि आपको 2 या 3 साल में एकदम तय है कि कुछ ऐसी चीजें कि जैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए, कॉलेज में एडमिशन के लिए, कि वो आपको पैसा चाहिए ही चाहिए होगा, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इक्विटी की तरफ ना देखें, आप शॉर्ट ड्यूरेशन में निवेश करें।
जी, अगले कॉलर है दिल्ली से आर एस दहिया, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
नमस्कार सर, माई क्वेश्चन टू द एक्सपर्ट इज दैट आई इन्वेस्टेड इन 4 स्कीम, दैट इज SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड इन्वेस्टको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सीकैप एंड JF फ्लेक्सीकैप, अबाउट 5-6 लाख इन ईच ऑफ दिस स्कीम फ्रॉम द पीरियड ऑफ जुलाई टू सेप्टेम्बर 2024. Now all the 4 schemes at the time of investment were number 1 performers. Now they have not been able to even meet the benchmark. I mean the performance is dismal. What should I do? What is your advice?
Dhaiya ji, I would say this time period about say 1-1.5 years is too short to comment on the performance of any equity fund. Whenever we invest in an equity fund, we must give them a good horizon, say at least 4-5 years of period. And moreover, as you were mentioning that all these schemes were at the top at that point of time. So no scheme ever or no sector ever remains at the top. So all schemes have their bad phases, and all sectors of the market have their bad phases, and that is why it is generally said that whenever you are investing, stay invested for a longer period of time, because there will be cycles, there will be ups and downs. So if you stay for a longer period, the up and down both together would average down your cost of purchase and would average your investment. So my whole advice would be to just stay invested, be a little more patient, and give equities time.
Our next caller is from Assam. We are joined by Shikha. We are joined by Shikha from Assam. Shikha, we believe there's a technical difficulty in the call and we could not get connected.
जी, लगता है उनका शायद रेडियो सेट की आवाज काफी तेज है, अगर वो अपने रेडियो सेट की आवाज बंद कर दें तो उनकी आवाज हम सुन पाएंगे. शिखा, आप सुन पा रहे हैं?
हाँ, हम सुन पा रहे हैं
जी. प्लीज अपना सवाल बताएं.
मैं 2 HWP की हूँ, SBI बैलेंस एडवांस लार्ज फंड में, और HDFC बैलेंस एडवांस फंड में. तो HWP एक का सही है, और मेरा SIP है बंधन फ्लेक्सी कैप, DSP ELS टैक्स सेवर, और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, और है SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड. तो ये का ठीक है मेरा ना, ज्यादा है, और ऐसे मैं अभी रिसेंट एक SBI का गोल्ड फंड में की हूँ SIP. तो ये मेरा करना का सही है, जानना चाहती हूँ HWP के लिए क्या ये दोनों फंड ठीक है ना. मैं और मेरा अभी जो हाथ में अभी जो कुछ पैसा आया है तो इसी HWP में डालूं ना दूसरा कोई फंड में डालूं?
शिखा जी, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप दोनों चीजें कर रहे हैं. कुछ पैसा ऐसा है जो कि आप रिकरिंग बेसिस पे SIP के माध्यम से 3-4 फंड्स में निवेश कर रहे हैं, और कुछ आपके दो फंड्स बैलेंस एडवांटेज फंड्स जैसे कि आपने बताए वहां पे आपने ऑलरेडी कुछ पैसा निवेश कर रखा है और SWP जो कि होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान वहां से आप इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं। देखिए बैलेंस एडवांटेज फंड्स इनकम जनरेट करने के लिए अच्छे फंड्स है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे लिए यहाँ पे बहुत जरूरी है कि एक जो मेन रूल होता है, एक जो थंब रूल होता है पोर्टफोलियो का, हम उसको समझें इनकम जनरेट करने के लिए। देखिए जब भी इनकम जनरेट करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा पूरा पोर्टफोलियो है वो कम से कम 30-40% आपका इक्विटी में रहे। बैलेंस एडवांटेज फंड्स में आप निवेश कर रहे हैं तो आपकी ये रिक्वायरमेंट मोस्ट लाइकली पूरी हो जाएगी, बट इसकी जो जरूरत होती है वो इसलिए होती है कि जैसे जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो हर समय बढ़ता रहता है और अगर हम इक्विटी में निवेश नहीं रखेंगे तो फिर आगे चल करके महंगाई के हिसाब से इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम निकालना मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे एक थोड़ी चीज है बहुत जरूरी है कि जो भी आपका कॉर्पस है आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप सालाना विड्रॉल कर रहे हैं उसमें से वो आपके कॉर्पस का 4-6% को एक्सीड नहीं कर रहा, तभी वो कॉर्पस ग्रो कर पाएगा और आगे चल के आगे वाले सालों में आपको एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम दे पाएगा।
Moving on to our stories now, global crude oil prices posted moderate gains this week. Brent crude rose nearly 0.3%, while WTI crude added around 0.4%. Earlier, oil prices had settled more than 2% lower on Friday. Brent crude futures shed around 2.6% to settle at $60.64 per barrel. WTI crude declined nearly 2.8% to settle at $56.74 per barrel. The decline was largely driven by concerns over a potential global supply glut. Markets also remain focused on the prospects of a Russia and Ukraine peace deal ahead of the talks between Ukrainian President Volodymyr Zelensky and US President Donald Trump.
और अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, खेल और विज्ञान से लेकर विश्व के सबसे बड़े मंचों तक हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 ने हर भारतीय को गौरवान्वित करने के कई क्षण दिए। प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि अब लोगों में स्वदेशी के लिए उत्साह दिखने लगा है।
स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया। लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो। आज हम गर्व से कह सकते हैं 2025 ने भारत को और अधिक आत्मविश्वास दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश नई आशाओं और नए संकल्पों के साथ 2026 में प्रवेश के लिए तैयार है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2026 विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। उन्होंने वर्ष 2026 की शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया बड़ी आशा के साथ भारत की ओर देख रही है और इसका सबसे बड़ा कारण युवा शक्ति है।
And we're joined in by our next caller from Bihar. Chinku ji, please ask your question. Welcome to Market Mantra.
Namaste, sir.
Ji, namaskar.
Sir, मैं दिल्ली में काम करते हैं लेबर में कोई कंपनी में और मेरा 41 वर्ष एज हो गया। लड़का 11 साल का है और लड़की 5 साल का है। ठीक है, दो बच्चियां हैं। तो बच्चियां के लिए सोचते हैं कि कल क्या होगा कोई पता नहीं। दुनिया तो बहुत तेजी से भाग रहा है, महंगाई हर चीज बढ़ रहा है, तो उसके पढ़ाई और के लिए कोई जानकारी दीजिए। ऐसा कोई कर दे महीने में, ऐसा भी करे जो अच्छा उसके एजुकेशन में, पढ़ाई में अच्छा काम आवे। आगे दिन क्या होगा कुछ पता है सर? यही जानकारी हमें चाहिए।
टिंकू जी, आप एक म्यूचुअल फंड से एकदम ही एक प्लेन इंडेक्स फंड से किसी भी आप अपने जो भी आपका बैंक है, जहां पे आपका बैंक का खाता है, वहां पे जा सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक प्लेन इंडेक्स म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करना है। वहां पे आप छोटा सा अमाउंट जितना आप कन्वीनियंटली कर सकते हैं 500-1000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। अब तो आप 250 रुपए की भी SIP शुरू कर सकते हैं। और आप उसमें निवेश करना शुरू करिए। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि ये 5 साल से ज्यादा का निवेश रखिएगा, और जैसा कि आपने बताया आपके बच्चों की जो एज है तो उस हिसाब से ये एकदम सही रहेगा। आप वहां पे बस बीच में आपको करना है कि आपको बीच में घबराना नहीं है और कोशिश करके पैसे नहीं निकालने, आप लगातार निवेश करते रहिएगा और कुछ 3-4-5 सालों में आप देखेंगे कि वो पैसा काफी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी के साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे कि आपकी अगर बेटी की एज अभी 10 साल से नीचे है तो गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है सुकन्या समृद्धि योजना, आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं। वो भी बहुत ही बेहतरीन स्कीम है और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है, काफी अच्छा ब्याज मिल जाता है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें रहता है, तो आप इन दोनों में मिलाकर के पैसा लगा सकते हैं
जी। और अनिश्चितता की बात इन्होंने की थी तो उसके लिए एक टर्म इंश्योरेंस जरूर ले लें।
हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है
जी। अगले कॉलर है दिल्ली से केशव, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हेलो नमस्कार जी।
नमस्कार
सर, हमें ये पूछना है कि जैसे आम आदमी एफडी की तरफ ही ज्यादा ध्यान देता है क्योंकि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का उसको इतनी जानकारी नहीं होती और बिना जानकारी के वहाँ वो फंड लगा नहीं सकता, तो एफडी हमारे लगभग बनी है अच्छी खासी है, तो क्या आने वाले समय में अगर मेरा बेटा लमसम 2-5 लाख रुपए अगर लगा दे म्यूचुअल फंड में तो ये कैसे लग पाएगा, कैसे लगा पाएगा, ये जानकारी के अभाव के कारण नहीं उस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा पा रहे हैं, तो जानकारी के आप बता पाएंगे।
केशव जी मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो लमसम नहीं लगाइएगा, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं कि जो इक्विटीज है उसमें एकमुश्त पैसा लगाने में बहुत ही खतरा रहता है। देखिए मार्केट किस स्तर पर है, अभी ऊपर है या नीचे है, हमारे को कुछ नहीं पता, शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। अगर आप एकमुश्त पैसा लगा देंगे तो फिर उससे डर ये रहेगा कि मान लीजिए आज आपने सारा पैसा लगाया और अभी 2 हफ्ते के बाद मार्केट एकदम से क्रैश कर गई, तो एक एंग्जाइटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और लगता है कि ऐसे में जो भी पैसा बचा है वो निकाल करके हम लोग एग्जिट कर जाए, और फिर कभी दोबारा आप हो सकते कि नुकसान देख करके मन ही ना करे कि कभी हम आगे इक्विटी में निवेश करें। तो मेरी सलाह रहेगी कि इस पैसे को 6 महीने, साल भर या 18 महीने में, डिपेंडिंग ऑन कि ये पैसा आपके लिए कितनी अहमियत रखता है, कि आपके एक नॉर्मल पोर्टफोलियो का कितना बड़ा पोर्शन है, इसको स्प्लिट करके तोड़ तोड़ के एक SIP या STP के जरिए इंडेक्स फंड्स में या एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में निवेश करिए
जी। दिल्ली से वरुण हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
सर गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग
सर, मुझे हेलो
जी सवाल पूछे।
सर मुझे पूछना है, जैसे मेरा मोस्टली इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में है और ये 15 से ऊपर है, तो अभी जो फंड पहले जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे वो उतना अच्छा नहीं कर रहा है, और लोगों का कंपेरिजन में जैसा DSP का ब्लैक रॉक जो DSP का स्मॉल कैप फंड, तो सर पैसा निकाल के फिर दूसरा में डालने से फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच जाएगा, तो पुराना पैसा तो उसमें नहीं डाल रहा हूँ। नए जो है सर फंड वो चुनने के लिए क्या सर इसमें क्या क्या देखना चाहिए, फंड बहुत ज्यादा बड़ा ना हो और अच्छा फंड मैनेजर हो, और क्या क्राइटेरिया हो सकता है सर, प्लीज मेरा मार्गदर्शन कीजिए।
देखिए एक तो आप जैसे कि आपने कहा आप फंड मैनेजर देखिए, साथ ही में आप देखिए कि वो फंड मैनेजर उस फंड को कितने समय से निवेश कितने समय से मैनेज कर रहा है, और उस पर्टिकुलर फंड ने डिफरेंट पीरियड्स में कैसा परफॉर्म किया है। आप पिछले 4-5 साल के उसके एनुअल हिस्ट्री निकाल करके देखिए कि जब कोविड आया था तो फिर वो कितना गिरा था इन कंपेरिजन टू जो अदर स्मॉल कैप फंड्स है, और जब मार्केट में थोड़ा सा बुलिश फेज आया तो फिर वो बाकी के फंड्स के कंपैरिजन में कितना उठा, क्या वो एक ऐसा फंड था कि वो बाकी के स्मॉल कैप फंड से जब मार्केट ऊपर गया तो सबसे ज्यादा उठा और जब मार्केट नीचे गिरा तो बाकी के फंड से सबसे कम नीचे गिरा, तो फिर वो एक बेहतरीन फंड हो सकता है। लेकिन साथ में हमारे को ये भी देखना है कि क्या वो ये कंसिस्टेंटली कर पा रहे, तो इसके लिए आपको कुछ सालों का पिछला रिकॉर्ड निकाल के देखना पड़ेगा, या फिर आप इसके रोलिंग रिटर्न्स देख सकते हैं जो कि हमारे एक ट्रेलिंग रिटर्न्स होते हैं डेली बेसिस पे, कि मान लीजिए जैसे 5 ईयर रिटर्न हो गया, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना देख करके कि हर हफ्ते हर महीने कि वो 5 ईयर रिटर्न्स वो कैसे मेंटेन कर पा रहा है। बाकी के जो एक आपने वर्ड बोला था कि जो उसका AUM है, देखिए आमतौर पे ये माना जाता है कि एक बहुत बड़ा AUM स्मॉल कैप फंड के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इसका एक बहुत ज्यादा कुछ एविडेंस नहीं है। हमारे पास आज की तारीख में ऐसे कई स्मॉल कैप फंड्स हैं, निपॉन उनमें से एक है, जिनका AUM भी अच्छा है और उनका प्रदर्शन भी अच्छा है। तो आप पास्ट रिकॉर्ड पे ज्यादा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा समय दीजिए। अगर अभी कुछ आपके फंड्स थोड़ा सा अभी ढीला कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा रखिए। और वहीं पे एक मैं चीज ध्यान देने को कहूंगा कि स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत अहम हिस्सा ना बनाए, क्योंकि आमतौर पे इस तरीके की एंग्जाइटी तब होती है जब स्मॉल कैप एक आपके पोर्टफोलियो का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। एक नॉर्मल इक्विटी पोर्टफोलियो का 15-20% 10% उससे ज्यादा स्मॉल कैप रखेंगे तो थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल ज्यादा रहेगा।
आकार, अ वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क, दैट व्हाट शुड बी द काइंड ऑफ फंड दैट वी टेक और हाउ शुड वी कंपेयर द फंड्स टू अवॉइड एनी ओवरलैप। इज देयर एनी वे दैट अ जनरल नॉर्मल इन्वेस्टर, बी इट गुवाहाटी और गुजरात, बी इट कन्याकुमारी और कश्मीर, एनीवन एंड एवरीवन कैन सी देम, how can they get that information?
Yeah, firstly, the first thing is to not to invest in too many funds of the same category. Because if you're investing in too many funds of the same category, there are high chances of, getting an overlap. Secondly, you can always go through their fact sheets. All funds are mandated to disclose their portfolio at every month end, which can help you get an idea.
True. We're joined in by Ravi from Mumbai. Ravi, please ask your question.
Hello. Namaskar. Ji, namaskar. मुझे एक्सपर्ट से सवाल है दो। एक तो डिफरेंस जानना था, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में डिफरेंस क्या है। दूसरा, मैंने तीन फंड है जो फ्लेक्सी कैप के, उसमें से कौन सा बेटर है। एक तो 5 ईयर्स लॉक इन वाला है उसमें, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फ्लेक्सी कैप फंड वो है। दूसरा नॉर्मल है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान, और तीसरा है ICICI प्रूफ फ्लेक्सी कैप फंड। ये तीनों में कौन सा बेटर होगा? परफॉर्मेंस वाइज जो देखा है मैंने, रिटायरमेंट फंड का ज्यादा है जो 5 ईयर्स लॉक इन वाला है।
रवि जी, जो मेन डिफरेंस है एक फ्लेक्सी कैप और एक मल्टी कैप फंड में, वो ये है कि जो फ्लेक्सी कैप है वहां पे जो फंड मैनेजर है वो एकदम फ्री होते हैं कि वो आपका पैसा अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में अपने डिसीजन के हिसाब से लगा सकते हैं किसी भी प्रपोर्शन में। आमतौर पे देखा गया कि फ्लेक्सी कैप जनरली लार्ज कैप हेवी होते, अराउंड 70% होते, बाकी का मिड एंड स्मॉल कैप में होता है। वहीं पर जो मल्टी कैप फंड्स है वो थोड़े से ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं, क्योंकि वहां पर मिनिमम 25% लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में लगाना जरूरी होता है एक फंड मैनेजर के लिए।
जी, और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने में अब तक भारत के शेयर बाजार से 14,734 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। वैसे ताजा आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारत के ऋण बाजार में 361 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
After snapping a two-week losing streak, domestic benchmark indices are expected to take cues from mix of domestic and global factors next week. One of the major triggers will be India's industrial production data, scheduled to be released tomorrow. On the global front, the US Federal Reserve is set to release the minutes of the Federal Open Market Committee meeting on the 31st of December.
और वर्ष 2025 भारत के विकास यात्रा में एक निर्णायक अध्याय के रूप में माना जाएगा, ऐसा लगता है वैभव हमें, क्योंकि इस साल हम देख रहे हैं काफी कुछ हमारे देश में हुआ है।
Absolutely.
ये देश आर्थिक प्रगति के साथ साथ और भी कई फ्रंट्स पे, अगर हम देखें कई मोर्चों पे, हमारे देश का प्रदर्शन बहुत अच्छा
Absolutely.
रहा है।
I believe Subodh, India has truly built its reputation and the fundamentals are strong. Taking a concluding remark from our expert Akar, what would you say, how would be things in the future or in the near future, as to say?
I would say there's nothing, it's not possible to predict, as I always say, and it's better just to go with your asset allocation and your
True.
Financial plan.
Absolutely.
Jee. आकार, मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।
एंड बिफोर वी वाइंड दिस एपिसोड ऑफ मार्केट मंथ विद द क्लोजिंग हेडलाइंस, वंस अगेन इन इंडियन फ्यूचर्स मार्केट सिल्वर प्राइसेस सॉ 15% लास्ट वीक, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस पोस्ट मॉडरेट गेन्स लास्ट वीक, एंड डोमेस्टिक मार्केट्स टू फोकस ऑन इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा एंड ग्लोबल ट्रेंड्स फॉर क्यूज नेक्स्ट वीक। एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्र। नमस्कार।
नमस्कार।
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.